मंगलाचरण जो हमने कहा ना, उसमें अरिहंत सिद्ध साधु और जिनवानी, इनको नमस्कार किया, उनका स्वरूप बताता है, इसलिए उसको हम मंगलाचरण के रूप में कहते हैं। देखो, हमने आज तक अभी प्ररूपणाएं 20 प्ररूपणाओं में से पहले में पहले उसके दो भेद किए थे। बोलो बेटा, वेरी गुड, गुणस्थान और मार्गणास्थान। अब मार्गणास्थान में 14 तो मार्गणा है और अन्य भी 5 बातें उसमें है। सिद्धार्थ बताओ कौन कौन सी है। नहीं, मार्गणाएं नहीं पूछी, प्ररूपणा। मार्गणास्थान जो हमने 19, हाँ 14 मार्गणा और हाँ गुणस्थान नहीं लेना, गुणस्थान को एक अलग निकाला है, फिर 14 मार्गणा अलग। जीव समझ से बोले, वेरी गुड। ऐसे ये 20 प्ररूपणाएं हैं, यानी एक गुणस्थान, 14 मार्गणा और ये 5 बातें। अब 14 मार्गणाएं कौन कहेगा? हाँ बोलो, बहुत अच्छा। और किसने आपने याद किया? हाँ नहीं, हाँ आप बोलो। गति मार्गणा, गति मार्गणा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ सिद्धार्थ, आपने भी याद किया है, बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा याद किया। सारे भव्य हो, हाँ निकट भव्य, खाली पीली भव्य नहीं, जल्दी मोक्ष में जाने वाले सारे जीव हो। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। तो ये 14 मार्गणा में से हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा तो देखी थी, उसमें से हमारा ये वनस्पति कायिक जीवन के बारे में विषय चल रहा था। देखो, हमने इंद्रिय मार्गणा में गति मार्गणा में कितने ग्रुप किए, कितने भेद किए? चार किए। कौन कौन से? चित्रा जी आप बताइए। ये चार भेद किए। फिर इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से कितने भेद किए हमने मंदावीन? हाँ हाँ नहीं, थावर और तरफ इसके नहीं भेद, इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ऐसे गिनाओ खाली, पंच इंद्रिय, ऐसे पांच ग्रुप हो गए। उसमें संगी असंगी का भेद अभी यहाँ नहीं करना, इंद्रिय मार्गणा। अब काय मार्गणा में कितने भेद देखे थे बोलो सीधा? हाँ, कौन कौन से? बराबर, यानी ये तो पांच थावर हुए और एक त्रस्त, ऐसे मिलकर सब कायिक जीव इनको कहते, उसमें सारे जीव आ गए। संसारी जीवों की बात कर रही हूँ, षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करेंगे ऐसा कहते ना कि मुनि षटकाय जीवों की हिंसा नहीं करते। जब ऐसा कथन आता है तो षटकाय का अर्थ हमारे ऐसे चाल में आना चाहिए। तो इंद्रिय मार्ग, गति मार्गणा हुई, इंद्रिय मार्गणा हुई, काय मार्गणा। अब उसमें हम जो वनस्पति काय के बारे में देखे थे, देख रहे थे, तो वनस्पति काय जीवों में बहुत वैरायटी है। पहले में पहले हमने एक इंद्रिय से कितने भेद देखे थे जीव समास में? दो। कौन कौन से? सूक्ष्म और बादर। ये एक इंद्रिय में ये पांचों स्थावर आ गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सारे। तो इसके सूक्ष्म पांच और बादर पांच। तो ये सूक्ष्म में भी कौन कौन है? सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म जल का एक, सूक्ष्म वायु का एक और सूक्ष्म वनस्पति का एक। ये जो सूक्ष्म वनस्पति का एक है वो हो गया, ये तो साधारण ही होते, इनमें प्रत्येक नहीं होते। मैंने सूक्ष्म वनस्पति का एक का तो हुआ सूक्ष्म निगोध, अनेक जीवों का एक है। वो शरीर उनका सूक्ष्म है, उनका शरीर सूक्ष्म, उनका अपना शरीर है ना? हाँ वही उनका अपना शरीर है। साधारण में भी दो प्रकार, साधारण व्यक्ति है जिसको निगोध कहते हैं, ये निगोध दो प्रकार। हाँ ये सूक्ष्म भी होते हैं और बादल भी होते हैं। ये बादल भी हो रहे हैं वो किसी शरीर के आधार पर रहेंगे, वो दूसरों से हट जाएंगे, ये आलू प्याज वगैरह नहीं, या ये दो इंद्रियों से बनते हुए लिखे शरीरों के आधार से जो रिश्ते हैं वो सारे बादल नहीं होते। सूक्ष्म निगोह तो पूरे वातावरण में, पूरे 345 जनराजों में फैले हुए हैं। बिल्कुल एक शरीर में अनंत जीव, बादल सूक्ष्म में भी एक शरीर में अनंत जीव। साधारण का अर्थ ही होता है एक शरीर में अनंत जीव। अब ये जो साधारण जो है वो दो प्रकार के, सूक्ष्म भी है और बादल भी है, साधारण की बात है। अब यहाँ हम एक इंद्रिय की बात देख रहे थे, एक इंद्रिय में तो पांच प्रकार के सूक्ष्म और पांच प्रकार के बादर हैं, ये बात ख्याल में आई ना? तो अभी जो एक इंद्रिय की जो वनस्पति टाइप जो सूक्ष्म है, अभी एक इंद्रिय को हटा दो, अभी खाली हम वनस्पति टाइप को ले लें। वनस्पति टाइप यानी सारे, प्रत्येक साधारण सूक्ष्म बादल सारे ही वनस्पति का ही है। अभी ये पेड़ पौधे ये वनस्पति का ही है ना? अभी इसमें वनस्पति का इसमें भी एक इंद्रिय है ना, ये तो इसके भी दो भेद, एक तो सूक्ष्म और एक बादल। इस प्रकार से अब हम अलग टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे, सूक्ष्म और बादल। सूक्ष्म तो सारे निगोध है, उसमें प्रत्येक जीव है ही नहीं, ये साधारण ही है सारे, सारे ही सूक्ष्म वनस्पति का ही वो साधारण जीव है। निगोद सूक्ष्म निगोद नहीं, वो बादर निगोद है। आलू प्याज वाला वो बादर निगोद है। तो ये सूक्ष्म तो सारे निगोद है, यानी साधारण है। हाँ, वो भी एक शरीर में अनंत जीव, एक एक शरीर में अनंत जीव, ये सारे में फैले हुए है ये भी। अब ये जो बादर वनस्पति का एक है उसमें दो भेद थे, उसमें निगोद यानी साधारण और प्रत्येक। साधारण और प्रत्येक ये बादर के भेद है। बादर में निगोद भी है, 28 में प्रत्येक नहीं, 28 में बादर, और बादर में भी निगोद है। बादर शरीर वाले भी साधारण पाए जाते हैं, हमने देखा था ना, जो अन्य शरीरों के आधार से रहते हैं वो बादर निगोद जीव, और अन्य जो प्रत्येक वनस्पति है वो बादर प्रत्येक वनस्पति का ही जीव। सीधा ख्याल में आता है? हाँ हाँ हाँ, साधारण का अर्थ ही होता है बादर निगोद, साधारण का अर्थ है निगोद, ऐसा ले लेना। अभी उसका एग्जांपल है आलू प्याज या मनुष्य किरियन का, उनके शरीर के आधार से जो निगोद रहते हैं वे सारे। यहाँ तक ख्याल में आए तो हम फिर आगे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। बच्चों के तो जल्दी समझ में आएगा ऐसा है। हाँ वो बताती हूँ। अभी ये जो प्रत्येक तक आ गए ना मैं, यानी एक जीव एक शरीर, अभी जो एक जीव एक शरीर है वो सारे जो हम पेड़ पौधे देखते हैं, तो एक जीव एक शरीर यानी वो पूरा पेड़ एक जीव नहीं, उसमें उसके उगाना बहुत छोटी छोटी है, वो फूलों में पत्तों में डालियों में सारों में वो प्रत्येक शरीर वनस्पति वाले जीव रहते हैं। यानी ये एक पेड़ में असंख्यात जीव है प्रत्येक वाले, वो पेड़ को प्रत्येक नहीं था। सप्रतिष्ठित किसको कहेंगे? अभी ये प्रत्येक के आधार को जब बादर ये साधारण रहेंगे, प्रत्येक शरीर के आधार से ये बादर जीव भी रहते हैं साधारण, बहुत कोवले पत्तों में रहते ना, वो तो प्रत्येक शरीर है और वो प्रत्येक के आधार से साधारण भी रह रहे, तो ये कहेंगे प्रतिष्ठित प्रत्येक। बहुत सारे जीव है वहाँ, असंख्यात जीव रहते एक पेड़ में। हाँ अगर उसको मेन जीव मानेंगे तो उसके आधार से अन्य जीव रहते ऐसा कहना पड़ेगा। एक एक जीव एक एक वनस्पति का ही जीव है, बहुत सारे जीव। अभी एक पत्ता है ऐसा, तो उसमें छोटे 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 अनेक, वो सारे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है। यानी बहुत बड़ी अवगाहना वाला एकेंद्रीय वो तो आता है, जो हमने देखा था कि नहीं नहीं एकेंद्रीय की बात है, वो हजार योजन वाला जो कमल वगैरह, हजार योजन है कि एक योजन है, कमल का जो वो स्वयं ब्रह्मन जीव में पाया जाता है, उसकी बात नहीं, वो पूरा एक जीव है। ये तो छोटे छोटे अवगाहना वाले सारे जीवों की वहाँ इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग, यानी अभी एक पत्ता है ना, तो इसमें ये सारे अलग अलग एक एक जीव है, ये सारा मिलकर एक जीव नहीं। ये सारे ऐसे पत्ते में फूलों में, इसीलिए तो ये तो हमने देखा था ना रत्नवंश अवतार में, पत्ते से ढका हुआ अनाज भी मुनियों को नहीं चलता, पत्ते पर रखा हुआ भी नहीं, क्योंकि ये सारे इतने जीव वहाँ रहते, यानी पेड़ से अलग हुए वो ना पत्ता जो है, डालिया है, फूल है, वे भी इतने जीवन सहित है, और ये सारे प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है ये सारे। अभी क्लासिफिकेशन पहले समझ लो, पहले तो हमने देखा था सूक्ष्म और बादर। बादर में भी ये सूक्ष्म तो सभी निगोर यानी साधारण है, बराबर। बादर में भी साधारण यानी निगोर और प्रत्येक, ऐसे दो भेद ठीक है ना, साधारण। अब जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें हमने देखे थे स्वप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। स्वप्रतिष्ठित यानी क्या, कि इसके आधार से ये जीव रह रहे। ये जो हमने देखा ना एक संग एक एक प्रत्येक वनस्पति, तो उसके आधार से यहाँ अनंत साधारण वनस्पति का इनको उनके अनंत शरीर है। यहाँ एक एक पकड़ लिया हमने, मान लिया पत्ते, एक पत्ता नहीं है, एक प्रत्येक शरीर का जीव, उसमें बहुत सारे प्रत्येक हैं। हाँ सब में फल फूल पत्ते सारों में ये समझ लिया। हाँ उसमें तो बहुत सारे प्रत्येक वनस्पति का ही जीव है। आधार से बहुत सारे बादर शरीर होंगे, बादर निगोद के, और एक एक शरीर में अनंत के। तो जब बहुत कोवले होते पत्ते तो उनके आधार से बादर जीव रहते, वो पत्ता बड़ा हो जाता है तो ये बादर जीव उसमें से निकल जाते हैं और फिर वो अप्रतिष्ठित बनता है। तो स्वप्रतिष्ठित अवस्था में उसको हम अनंत काय कहते हैं, जिसको हम नहीं खाते क्योंकि अनंत जीवों की हिंसा होती है। और अप्रतिष्ठित यानी अभी उसके आधार से निगोद जीव नहीं है तो फिर उसको हम खाने योग्य समझते हैं। नहीं पालक क्यों, क्योंकि उसमें वो तो बिल्कुल कौले होंगे तो सब प्रतिष्ठित, और उसमें त्रसु जीव ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो हरी वनस्पति होती है प्रत्येक वनस्पति तो उसमें है ही है, परंतु उसके आधार से त्रसु जीव, क्योंकि वो जमीन के नजदीक होते हैं और उस पत्तों पर हमारे आंखों से दिखे ऐसे भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और माइक्रोस्कोप में देखे तो भी वो अन्वय वगैरह होते हैं उसमें भी कोला वगैरह देखिए कि पालक वगैरह के वनस्पति खाने से कोलाइटिस जैसे भी हो जाता है, किसी को दस्त लग जाते हैं, तो ये छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उसमें, ये सारे त्रसु जीव है इसलिए उसको नहीं खाते। वो एक इंद्रिय हिस्सा है, अभी अभी अपने हिसाब से तो एक इंद्रिय मानेंगे हम उसको, उसको तो त्रस जीव कहना पड़ेगा। अमीबा क्योंकि वो एनिमल सेल है ना, वनस्पति नहीं है वो, एनिमल सेल अगर कहोगे तो एनिमल में तो पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति ये सारे तो उसमें चले जाएंगे सावर में, तो उसको एक इंद्रिय भी नहीं कह सकते, वो तो त्रस जीव हो जाएगा। वो तो कल बताए सूक्ष्म और बादर, ये तो साइज की अपेक्षा से नहीं, कलम में इसने पढ़ा भी था, बहुत छोटा है इसलिए सूक्ष्म और बड़ा है इसलिए बादल ऐसा नहीं है उनका शरीर। हाँ ये भी बताया था कि दीवार में से भी चले जाएगा इसलिए वो सूक्ष्म करना था। कभी हमने कहाँ तक पढ़ा था, 144 पेज तक आया था ना। पर आए थे ये टेबल भी देखा था ना 144 पेज का। नहीं वो नित्य निरंकार था, अनादिकाल से ऐसे निरंतर जन्मते 145 पेज पर आए थे। हाँ वो निगोद से हम वो नित्य निगोद के वहाँ से फिर पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ 145 पेज। हाँ वो आगे बढ़े थे हम फिर भी यहाँ से फिर पढ़ते हैं। नित्य निगोद का अर्थ है अभी निगोद यानी साधारण वनस्पति इतना ही ख्याल में आया ना, क्योंकि ये सारे टेबल है ना ऐसे किसी ग्रंथों में नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद उसके जो अलग अलग जगह अलग अलग जो उसका क्लासिफिकेशन है वो यहाँ इकट्ठा रखने का प्रयत्न है। वो कोई मन की बात नहीं है, शास्त्र ही है, परंतु एक जगह कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। नित्य निगोद का अर्थ है कि जो जीव अनादि काल से आज तक निरंतर निरंतर है बीच में अन्य पर्याय धारण किए बिना मरकर फिर निगोद मरकर फिर निगोद फिर निगोद फिर निगोद ऐसे तो निगोद पर्याय में ही जन्म मरण करते आ रहा है। अन्य किसी भी पर्याय में उन्होंने एक बार भी जन्म धारण नहीं किया। कितने ही जीव ऐसे होंगे वो अनादि से अनंत काल तक, क्योंकि नित्य निगोद कभी खुटेगा नहीं। इसका अर्थ क्या है, यानी हमेशा नित्य निगोद रहेगा कि कभी खलास हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, अनंत जीव हमेशा निगोद में ही रहेंगे, कभी एक समय मात्र के लिए भी बाहर नहीं आएंगे। भव्य भी अनंत भव्य जीव भी उसमें पड़े हैं सारे। वो तो भव्य ही फैलाएंगे, अभव्य ऐसा नहीं, कितने ही बाहर आके फिर जाएंगे निगोद में। नहीं जो इतर निगोद वाले हैं उसमें भी भव्य अभव्य दोनों है ना, यानी बाहर निकलने वाले भव्य है और अंदर पड़े हुए अभव्य ऐसा नहीं। बाहर आने यानी वो तो देवगति में भी जाएंगे, नरक में जाएंगे, मनुष्य बनेंगे, फिर वापस निगोद में जाएंगे। ये तो अनंत ऐसे परावर्तन क्यों जीव में, तो उसमें भी भव्य अभव्य सारे है। बाहर निकलने वालों में भी अभव्य है और अंदर रहने वालों में भी भव्य है, ऐसे दोनों में समझ में गया। ख्याल आता है, इतर निगोद यानी क्या कि जो अन्य इतनियों में गए त्रस में गए और फिर वापस निगोद में चले गए। ये बात आती है ना कि त्रस का अधिक से अधिक काल कितना है, कोई जीव निगोद से बाहर आया और उसने त्रस पर्याय पाई दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक, तो अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 2000 सागर यानी साधिक 2000 सागर कहा मैक्सिमम। सबको इतनी लंबी नहीं है, त्रस पर्याय मिलेगी ऐसी बात नहीं है। त्रस यानी द्वेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जन्म मरण करता रहेगा वो, अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक तो कितना होगा 2000 सागर। फिर वापिस कहाँ जाएगा, वो अपने पियर में जाएगा कहते उसको हा? का हमेशा का रहने का ठिकाना निगोद में वापस चला जाएगा। देखो इतर मायका पियर यानी मायका, हिंदी में मायका कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पियर भी कहते हैं। हाँ वहां से निकले ना और वही जाते हैं फिर घूमघाम कर। उनकी भाव कलम तो उनकी जो परिणाम ऐसे तो वहाँ भी परिणाम है ना, उनके शुभ और अशुभ भी है। अकेले शुभ है ऐसा अकेले अशुभ है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो अन्य एक इंद्रिय निकलेगा, वहाँ से जो मनुष्य पर्याय धारण करेगा, कोई चीजें होगा, तो उनके कौन से परिणाम होंगे, ऐसे कोई शुभ होगे कि नहीं, कि जिसके कारण वो अन्य ऐसी अधिक ज्ञान वाली पर्याय, और ये सारा सहज होता है वो तो वहाँ को और वहाँ भी उनके और ऐसा कोई हमें लगता है कि नहीं हम सोच समझ कर परिणाम कर रहे हैं और हम इसमें से अच्छी अच्छी परिणाम करके बाहर निकलेंगे, ऐसे कोई नहीं, वो परिणाम अपने हाथ की बात नहीं है। ये अज्ञान अवस्था में उसका स्वामित्व रहता है कि मैं देखो इसको फल चुका, मैं ऐसे परिणाम करूंगा, मैं वैसे करूंगा। ये तीसरा पैराग्राफ। इतर निगोध उन जीवों को कहते हैं कि जो जीव निगोध पर्याय से निकल कर यानी वहाँ की आयु पूरी करके कहाँ अन्यत्र जन्म लेंगे, अन्य केंद्रियों या त्रस्त पर्यायों में जन्म धारण करके कुछ काल वहाँ जन्म मरण करके पुनः वापस निगोध पर्याय धारण करके वर्तमान में निगोध में ही जन्म मरण कर रहे हैं, क्योंकि इतर निगोध है ना, निगोध कहा उनको, तो अभी वहाँ निगोध में है, परंतु एक बार उन्होंने बाहर का चक्कर काट कर फिर वो वापस गए अपने घर। इन सभी के ने हमने जो वनस्पति कायिकाओं के बहुत सारे भेद प्रभेद देखे थे, उन सभी के पर्याप्त और अपर्याप्त दो दो भेद होते हैं। देखो सूक्ष्म निगोध भी हमने देखे थे ना, उसमें भी पर्याप्त होंगे, उसमें भी अपर्याप्त होंगे। निगोध कहते ही एक श्वास में 18 बार जन्म मरण ऐसी अनेकों की मान्यता है, क्योंकि चढ़ाला में आता है ना, तो इसलिए ऐसे लोग समझते हैं कि अकेले निगोध ही इतने जल्दी जल्दी मरते हैं। वह मात्र अपर्याप्त निगोध के बारे में सही है। इतना ही नहीं, एकेंद्रिय से लेकर संनिपंचेंद्रिय तक के सभी अपर्याप्त जीव, उसको हमने दूसरा एक नाम देखा था, याद है? हाँ नहीं, क्षुद्र भोग कहा था, अल्प आयु ना एकदम शुद्ध, तो क्षुद्र भोग उसमें पुस्तक में मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ, सभी अपर्याप्त जीव इतनी अल्प आयु के धारी होते हैं। पर्याप्त की प्ररूपना में हमने देखा था कि ऐसे अपर्याप्त जीव निरंतर क्षुद्र भोग धारण करते रहे तो निरंतर ने अपर्याप्त मरा, फिर अपर्याप्त में जन्मा, फिर मरा, फिर अपर्याप्त हुआ, फिर मरा, यानी कौन सा अपर्याप्त? कोई भी, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक का कोई भी अपर्याप्त, उसमें जन्म मरण करते रहे तो एक अंतर्मूर्त में एक जीव के, कितने जीवों के, एक ही जीव कितने बार जन्म मरण करेगा? 66,336, यानी कितने? 66,336 इतने भव होंगे उसके एक अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट में। उनमें से लगातार एकेंद्रियों के क्षुद्र भव 66,132 होते हैं। लगातार एकेंद्रियों में यानी पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति और जल वगैरह, उसमें ही वो लगातार घूमे तो अपर्याप्त हो, अन्य में नहीं, बाहर नहीं आया, एकेंद्रियों से बाहर नहीं आया तो। उनमें पृथ्वी जल वायु अग्नि और साधारण वनस्पति के हरेक के हमने देखे थे ना, एक इंद्रियों के कितने भेद होते हैं? सूक्ष्म और बादल, तो ये हरेक के दो दो भेद हुए, यानी कितने हुए? 10। वनस्पति में हमने देखे थे सूक्ष्म और बादल, तो इसमें हम वनस्पति का एक नाम नहीं लिया, निगोध के लिए यानी साधारण वनस्पति के सूक्ष्म और बादल, यानी पृथ्वी के दो सूक्ष्म बादल, अग्नि के दो, वायु के दो, जल के दो और निगोध के दो, यानी साधारण के दो, जैसे 10 हो गए, और एक जो ये प्रत्येक वनस्पति वाला एक और, ये 11 हुए। ख्याल आता है? क्योंकि ये साधारण यहाँ भी है सूक्ष्म में भी और बादल में भी है, और एडिशन प्रत्येक वनस्पति भी है, इसलिए एकेंद्रियों के वो 10, 5 सूक्ष्म, 5 बादर, और प्रत्येक वनस्पति, हाँ वो प्रत्येक वनस्पति ऐसे 11 भेद एक इंद्रियों के हुए। तब ये सिंपल यहाँ गणित है कि एक इंद्रियों के एक अंतर्मुहूर्त में 66,132 भेद होते हैं। एक इंद्रियों में कितने भेद देखे अभी हमने, 11। तो 11 में 66,132, तो एक के लिए कितने, एक एक उसका जो टाइप है ना, सूक्ष्म पृथ्वीकाई या सूक्ष्म अग्निकाई या ऐसे सारे 11 गिना, तो एक एक के कितने भो होंगे बोलो आप, कोई गणित अध्याय या 66,132 डिवाइडेड बाय 11। आगे लिखा होगा पढ़ो 6,712, हाँ बराबर है 6,012। बराबर है, देखो उनमें पृथ्वी जलवायु अग्नि और साधारण वनस्पति के हरेक के सूक्ष्म और बादर दो दो भेद करने पर 10 तो ये हुए, और प्रत्येक वनस्पति का एक कुल मिलाकर ने टोटल 11 प्रकार के एक इंद्रिय जीव है और सबके अपर्याप्त भेद भी है, इसलिए 66,132 उसको 11 से हमने भाग दिया तो आए 6,012 6,012। हर एक प्रकार के इंद्रियों में लगातार क्षुद्र होते रहे तो एक अंतर्मुहूर्त में यानी एक एक प्रकार के इंद्रियों 6,012 भव होते हैं, यानी सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी लगातार होता रहे तो कितने होंगे 6,012। ऐसे हर एक में समझना। अब बादर साधारण वनस्पति अर्थात बादर निगोद मात्र प्रत्येक वनस्पति के आधार से ही रहते हैं ऐसा नहीं है। हमने देखा था बादर निगोद कहाँ कहाँ रहते हैं, पहले हमने सीखा था, तो प्रत्येक वनस्पति के आधार से तो रहते ही है, और कहाँ रहते हैं मनुष्य और तिरियंशों के सही यानी दो इंद्रियों से लेकर जो पंच इंद्रियों तक के जीव है, सारे पंच इंद्रियों नहीं लेना, हाँ देवनारकी यानी वैश्विक शरीर वालों को छोड़ दिया बराबर, आहारित शरीर वालों को छोड़ दिया, और किसको छोड़ेंगे केवली भगवान को छोड़ेंगे उसमें से यानी अरिहंत भगवान को, और कोई है तीर्थंकरों के शरीर में, आप देखो ये फिर आएंगे यहाँ ये सारा गिना है। दूसरी लाइन द्वीय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तिरियंशों के एवं मनुष्यों के शरीर के आधार से वे रहते हैं, इसमें अपवाद है केवली के शरीर का और आहारक शरीर का। 12वें गुणस्थान वाले जीव के औदारिक शरीर में से बादर निगोद राशि निकल जाती है और 13वें गुणस्थान में उसका परम औदारिक शरीर बन जाता है, उसी को परम औदारिक कहते हैं। नहीं वो सामान्य केवली और तीर्थंग ऐसा लेना था, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं। हाँ 12वें गुणस्थान में जाएंगे निगोद, सारी जो निगोद राशि है वो तीर्थंकर यानी वो जो तीर्थंकर बनेंगे तब, यानी सामान्य केवली हो या तीर्थंकर हो, पृथ्वी काय जल काय अग्नि काय वायु काय के आधार से भी, यानी कोई ऐसा समझता है कि पृथ्वी में निगोद रहते होंगे तो ऐसा नहीं है, अग्नि में भी नहीं रहते निगोद, जल में भी निगोद जीव नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं या तो प्रत्येक वनस्पति के आधार से या मनुष्य और तिरियंशों के जो औदारिक शरीर है उनके आधार से, वो उस एक्सेप्शन जो हमने देखे थे वो वैसे। देव और नारकी के व्यतिरिक्त शरीर में भी बादर निगोद नहीं रहते हैं। बादर निगोद कहने का कारण है कि सूक्ष्म निगोद तो सर्वत्र रहते हैं, उन्हें अन्य किसी के आधार से रहने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहले देखा था, वो तो सारे पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं। साधारण वनस्पति के भेद प्रभेद निम्न प्रकार हमने देखे, ये अकेले साधारण वनस्पति के भेद देखे। पहले हमने जो टेबल देखा था 144 पेज पर, वो था प्रत्येक वनस्पति का। अब यहाँ देख रहे हैं साधारण वनस्पति का, यानी अकेले निगोद का यहाँ वर्णन है। तो उसमें है सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। सूक्ष्म निगोद में भी नित्य और इतर है, और बादर में भी नित्य और इतर है। देखो आपका प्रश्न था ना, वो खाली नरक के नीचे ही नित्य निगोद होता है, और यहाँ क्या देख रहे हैं हम, सूक्ष्म निगोद कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरे लोकाकाश में। इससे क्या सिद्ध हुआ, वो नित्य निगोद भी पूरे लोकाकाश में होंगे, वो नीचे भी उनकी जगह है, वहाँ तो हमेशा निगोद बने रहेंगे, वहाँ तो है ही है, परंतु अन्यत्र भी है। अब ये एक एक के सारे के भेद है, पर्याप्त अपर्याप्त, यानी नित्य निगोद में भी पर्याप्त अपर्याप्त हो गए, इतर निगोद जो सूक्ष्म है उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त हो गए। अब जो बादर निगोद है, बादर निगोद में भी नित्य है और इतर निगोद है, उसमें भी हरेक में पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त है। इस प्रकार वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति के चार, पहले हमने देखे थे ना लास्ट पेज पर, देखो प्रत्येक वनस्पति के कौन से देखे थे, प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और उससे फिर पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त। तो प्रत्येक के चार और साधारण वनस्पति के आठ भेद हमने देखे। तो ये सारे हमारे ख्याल में है ना, अभी ये सारे काय में लिया हमने, वनस्पति काय में ये सारा उसका वर्णन लिया। कौन सी मार्गणा चल रही है हमारी, काय मार्गणा। काय मार्गणा से कितने भेद देखे, हाँ चित्रा जी, छह, पांच सावर और स्त्र। नीचे से दूसरा करेगा, हे जी इन सब पर्यायों में अनादि से आज तक अनंत काल तूने जन्म मरण करने में बिताया है। ये हम इन सारे पर्यायों में जन्म मरण करते 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 आज यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हैं, तुझे स्मरण नहीं तो क्या हुआ। अभी आपको पता है, हाँ स्मरण है, माँ के पेट में थे तभी का, क्यों इसका नाम क्या, साहिल। आपको याद है माँ के पेट में कैसे आप खेल रहे थे, कैसे हाथ पैर हिलाते थे, नहीं याद, तो आप थे कि नहीं, माँ के पेट से भी आए ना बाहर। तो ऐसे यहाँ क्या कहते हैं कि हम पहले इस भवों में थे, पहले हम भी निगोद में थे, इंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्इंद्रिय सारे अन्य अन्य पर्यायों में 84 लाख योनियों में घूम घाम कर अभी आए हैं यहाँ, तो हमने ये भव बिताए कि नहीं बिताए, अभी हमें याद नहीं है, परंतु हम थे कि नहीं इन भव में, क्योंकि हम अनादि से है ये तो मालूम है, और अभी है, अभी तो मनुष्य पर्याय इतनी सी है हमारी 50 साल से, तो इससे पहले हम थे, तो किसी में किसी भवों में जन्म मरण करके तो आए हैं यहाँ, और पंचम काल में यहाँ जन्मे हैं, तो जन्म से तो हम मिथ्या दृष्टि थे, जन्म से तो सम्य दृष्टि थे नहीं है, इस काल से क्या हुआ, ये सारे चक्कर काट काट कर हम यहाँ तक आए हैं, तो हमें अभी याद नहीं, परंतु फिर हम भगवान हमें बताते हैं कि इतनी सारी सारी योनियां पाई जाती है, इतनी सारी पर्याय पाई जाती है, और जीव इन पर्यायों में हमेशा घूमता रहता है। हमें क्या लगता है, अभी हम थोड़ा शुभ भाव करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, अब स्वर्ग में वो सारा भोग भोगने की इतनी इच्छा होगी कि वहाँ से चेकर एक जीव में चला जाएगा, पृथ्वी का ही बनेगा, और फिर उसका ये चक्कर चलता रहेगा, यानी कभी अच्छा कभी बुरा ये सब चलता रहेगा, उसमें अच्छा बुरा है ही नहीं है, कोई भाव अच्छा नहीं है, चारों गति में कोई गति अच्छी नहीं है। तो ये मनुष्य गति जब हमें मिली है, तो यहाँ संगी पंचेंद्रिय प्राप्त हुआ है, पंचेंद्रिय बना, और शास्त्र का यानी जिनेन्द्र भगवान का उपदेश हमको सुनने को मिलता है, तो ये हम बहुत महान कहीं कोई पुण्य किया था उसका भी हमें फल मिल रहा है। तो वर्तमान में ऐसे हम अगर खो देंगे ये भाव, तो हमारे जैसे यानी करुणा के पात्र अन्य कोई नहीं रहे। तो इतना उपदेश मिला है, और उस पर अभी कुछ बुद्धि भी यहाँ चलती है ना, कि कुछ हम अपना सब पर्यायों को पार करके अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय तुझे प्राप्त हुई है, परंतु तुझे उसकी कीमत नहीं है। ये हमारी सबकी बात चल रही है। यदि अब भी तुझे स्वयं के कल्याण की बात सूझती न हो या किसी ने तुझे बता दी तो रुचती न हो तो समझ ले इन पर्यायों में पुनः वापस लौट कर जाना निश्चित है। घूम घाम कर ये तो कहते थे ना स्वामी जी, ये तेरे त्रस्त पर्याय का अंतिम भव हो सकता है, तो अभी फेंक ले, अभी कल्याण कर ले तो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, तो ये पुनः इस चक्कर में घूमना नहीं पड़ेगा, ये सारे परावर्तन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। शुद्र भव में सम्मूर्छन मनुष्य भव भी समाविष्ट है। एक अंतर्मूर्त में उनके निरंतर 8 भव हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य भव प्राप्त होकर भी क्या फायदा, उनकी तो बात छोड़ो, परंतु बेटियों हे जी, तुम तो अभी पर्याप्त मनुष्य हो, ज्ञान का इतना उहार है, सच्चे देव गुरु शास्त्र एवं उनका यथार्थ उपदेश तुम्हें प्राप्त हो गया है। इतना सब होने पर भी यदि तुमने स्वयं का आत्म स्वभाव और आत्म वैभव नहीं देखा, नहीं जाना, तो तुम्हारे इस मनुष्य भव का भी क्या फायदा हुआ। कोई जीव शुभ भाव करेगा तो उसे एक भव स्वर्ग का प्राप्त होगा। वहाँ जाने पर ऐश्वर्य भोग भोगने की इच्छा रूप पाप करके तथा तीव्र ईर्ष्या और आकुलता करके, क्योंकि अन्य देवों में जिसको अधिक ऐश्वर्य है, जिसका हुद्दा ऊपर का है, तो उसको देख देख कर ये जलन होती है उसको, और ये पाप बांधता रहता है। यानी वहाँ कोई ऐसे कमाने धमाने के कोई काम नहीं करने पड़ते, सारे ही अनुकूलता है, परंतु फिर भी दो जीव होंगे तो उनके ऐश्वर्य में फर्क होगा, या कोई जो उनके दास देव होंगे तो उनको ऑर्डर देंगे इंद्र कि चलो अभी ऐरावत हाथी बन जा, तो है वो वहाँ कोई हाथी घोड़े कुछ रहते ही नहीं स्वर्गों में, एक्सपीरियंस वहाँ है ही नहीं, वहाँ के देव ही अन्य अन्य रूप धारण करते हैं, वैकल्पिक शरीर है ना उनका, तो उनको वो दुख लगता है कि हम इनके नौकर हैं, तो ये हमारे से ऊपर के हैं या उनके पास ज्यादा ऐश्वर्य है, तो जलन होती है उनको। उसमें ऐसा दुख नहीं लगेगा उसको, रहेगा उसमें क्या, अभी यहाँ कोई किसी का दास होगा, राजा का दास होगा, तो उसको भी सम्य दर्शन हो सकता है, हो सकता है कि घर के नौकर को भी हो जाए और मालिक ऐसे बैठा रहे, वो क्या छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है उसको, वहाँ कोई तंग नहीं करता। ये सारे इसमें अनिष्टपना उनका खत्म हो जाता है समय ऋषि जी का। एक अकुलता करके वह जीव पृथ्वी काय का भी एकेंद्रियों में जन्म लेगा और फिर से भव भ्रमण करता ही रहेगा। हे जीव, दुनियादारी में तू स्वयं को इतना सयाना समझता है, तुझे यह सीधी सरल स्वयं के लाभ की बात क्यों नहीं समझ में आती। मुझे विश्वास है तुम इस बात पर जरूर विचार करोगी। शेष आगामी पत्र में तुम्हारी माँ। क्या रहा हुई है फिर? हाँ, वो तो हमें और प्रभेद किए उसके और डिटेल जानने के लिए, यानी वनस्पति काय को मैं कौन कौन से जीव कैसे कैसे पाए जाते हैं वो जानने के लिए। तरह ये संस्काय में तो हम खाली एक पांच स्थावर और एक तरह कितने भेद करें, उनका स्वरूप अधिक जानने के लिए ये सारे डिटेल्स यहाँ बताए। अकेले संस्काय एक जीव होते इतना ही आप याद रखोगे काय मार्ग नाम है तो बस हो गया। अब आगे इसमें योग वेद तथा ज्ञान और संयम मार्ग नाम का प्रकरण है, ये इसमें जितने होंगे वो आज ले लेंगे हम। गत पत्र से हम मार्गणा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 14 मार्गणाओं में से हमने गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, काय मार्गणा संबंधी चर्चा की थी। आज और कुछ मार्गणाओं के बारे में हम समझेंगे। अब योग मार्गणा का प्रकरण आज हम सीखेंगे। सर्वप्रथम योग शब्द का अर्थ देखते हैं। संसारी जीव अनादि से ही कर्म संयुक्त है, ये कल बात आई थी ना पंचाध्याय में, ये सभी शास्त्रों में यही बात आएगी। मुख्य मार्ग प्रकाशक में भी लिखा ना, अनादि से ही जीव और कर्म एक दूसरे के साथ ये बंधे हुए अवस्था में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं जीव शुद्ध था और बाद में कर्म आकर उसके साथ मिले, ऐसा कभी नहीं होता। और वह निरंतर नवीन नवीन कर्मों का बंद करता रहता है, यानी अनादि से तो कर्म बंध से युक्त है ही, पुराने कर्म में से कुछ निकल जाते हैं और नए नए कर्म का बंध उसको होता रहता है और उसका एक कर्म के साथ संबंध बना रहता है हमेशा। और शरीर संबंधी नौ कर्म वर्गणा भी ग्रहण करता है, क्या है हमेशा हर समय क्या करता है, कर्मों को भी ग्रहण करता है और नौ कर्म यानी शरीर के परमाणु है उनको भी ग्रहण करता रहता है। कर्म नौ कर्म वर्गणा को जीव ने उसको ग्रहण किया, ग्रहण किया नहीं उसको एक्सेप्ट किया, अट्रैक्ट किया, वो क्यों, तो जीव में भाव योग जो है उसके कारण। जैसे मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट है यहाँ रखा और सामने कोई लोहे के छोटे छोटे पीछे से रखे तो क्या होता है, वो आके उसको चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट होते ना उसकी तरफ। तो ऐसे ये अरे कर्म जो है नौ कर्म वर्गणा है वो जीव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जीव के आकर प्रदेशों में स्थित होते हैं। जीव का कर्म के जीव के प्रदेशों के उस पार नहीं रहता कि हम यहाँ बैठे हैं और हमारे सारे गहने कपड़े वो कपाट में, ऐसा नहीं है, कर्म कहीं और जगह नहीं है। जहाँ जीव के प्रदेश है उन्हीं आत्म प्रदेशों में ये सारे कर्म वहाँ है पहुंचे जो हमारे कर्म कहलाते हैं। तो ये वहाँ क्यों स्थित होते हैं, ऐसी जीव में कोई अट्रैक्शन पावर होगी ना कि यहाँ कर्म और नो कर्म उसकी तरफ खींचे चले आते, तो उसको कहते योग। क्या कहते योग, उसको भाव योग का। और आत्म प्रदेशों का जो कंपन है एक्चुअली वाइब्रेशन जो कुछ हो गए तो उसको कहते हैं द्रव्य योग। द्रव्य योग पुद्गल में नहीं लेना, आत्मा में ही लेना। आत्म प्रदेशों का एक्चुअल कंपन वो कहेगा द्रव्य योग, और उसके कारण जो आत्मा में ये जो शक्ति उत्पन्न हुई कर्म नो कर्म को लेकर उसको कर्म रूप परिणाम आने की, उसको कहेंगे भाव योग। आत्मा के प्रदेशों का चंचल रूप होना, सकंप होना, चलन रूप होना द्रव्य योग है। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से लोहे में जलाने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार अंगोपांग और शरीर नाम कर्म के उदय के कारण भाषा वर्गना, मनोवर्गना और आहार वर्गना के स्कंध आते हैं जीव की तरफ आते हैं। तब उनसे संबंध जोड़ने यानी अवलंबन लेने के कारण जीव के प्रदेशों में कर्म नो कर्म का ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य अर्थात योग उत्पन्न होता है। इतना ही समझना कि पहले जो नाम कर्म का उदय है उसके कारण में जीव में ऐसी वो शक्ति पैदा होती है और उसको वो कंपन होता है आत्म प्रदेशों का, और उसके कारण कर्म नो कर्म के परमाणु उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मन वचन और शरीर का अवलंबन लेकर जीव मन द्वारा जानने संबंधी, बोलने संबंधी एवं शरीर की हालचाल करने संबंधी प्रयत्न रूप प्रवृत्ति करता है। शरीर मन और वाणी इनके द्वारा, शरीर के द्वारा क्या प्रयत्न करेगा, कुछ कार्य करने के, हिलने चलने रूप, वचन द्वारा क्या करेगा, बोलने रूप प्रयत्न करेगा, प्रयत्न लिया पहले, और मन द्वारा जानने की। तो ऐसी जब प्रवृत्ति के लिए वो प्रयत्न करता है, उस समय आत्म प्रदेशों की चंचलता के कारण नए नए नौ कर्म स्कंध आकर जुड़ जाते हैं। इसे ही हम मन वचन का योग कहते हैं। देखो ये योग का प्रकरण वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है, पर सुनने के बाद ख्याल में आ जाएगा। हम कहते हैं मन वचन का योग है, तो मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, काय भी पुद्गल है, परंतु उसमें जो जीव प्रवृत्ति करके जुड़ जाता है, उसका अवलंबन लेकर आत्म प्रदेशों की जो चंचलता होती है, उसको कहते हैं मन योग, वचन योग और काय योग। क्योंकि योग तो जीव का है, वो भले विभाव है या कुछ भी है, मगर वो तो जीव का है। और जो मन वचन और काय जो है वो पुद्गल के है, तो उन पुद्गल के मन वचन काय का अवलंबन लेकर आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है उसको कहते हैं योग। और उसी के कारण कर्म भी आते हैं और नो कर्म भी आते हैं। हमने देखा था कि चार प्रकार से बंध होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग। तो प्रदेश और प्रकृति काहे से आते हैं? प्रदेश और प्रकृति योग से। ये योगी है कि आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है उसके कारण वो कितने नंबर ऑफ परमाणु आएंगे, कौन सी प्रकृति आएगी, ये जो योग के कारण डिसाइड हो जाता है। देखो तो कोई कसरतबाज व्यायामबाज होगा तो उसका शरीर भी मजबूत बलवान दिखता है। जिन अवयवों को वह अधिक काम में लेता है वे अवयव अधिक बलवान और मोटे दिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि योग द्वारा उन विवक्षित स्कंधों का अधिक संचय हुआ। कुछ काल तक हम विवक्षित स्नायु काम में न ले, उसका इस्तेमाल न करे तो वह दुबला होता है, सूख जाता है, डिस्यूज एट्रोफी होती है। इसीलिए पोलियोग्रस्त पैर से चलने का काम नहीं किया जाता तो वह छोटा रह जाता है। इस तरह से कारण कार्य संबंध पर हम सोचे तो लौकिक व्यवहार की अनेक बातों का रहस्य खुल जाता है। तीन प्रकार के योग संभव थे, ये जो हमारी अभी बात आ गई, अभी योग मार्गणा में तीन प्रकार के योग है। कौन कौन से? मनोयोग, वचन योग और काय योग। योग का सद्भाव 13वें संयोग केवली गुणस्थान तक पाया जाता है। ये कौन सा गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग। सयोग यानी योग सहित। और 14वां अयोग यानी योग रहित। अयोग के लिए उनमें योग नहीं है, तो योग नहीं है तो वहाँ कर्म आएंगे क्या? बाहर से कर्म को बांधेंगे क्या? योग रूप है ना, तो कर्म क्यों आते हैं? कर्म और नो कर्म योग के कारण। तो नए कर्म के परमाणु भी नहीं आएंगे और नए शरीर के परमाणु भी वे ग्रहण नहीं करेंगे। जो पहले का शरीर होगा तो वो तो होगा, बना रहेगा। तो वे गुणस्थान में वो तो अभी शरीर है ना उनको, केवली भगवान को, परंतु वहाँ नवे परमाणु ग्रहण नहीं हो रहे। पहले जो है वो जो निकल जाएंगे वो निकल जाएंगे। चौदहवीं अयोग केवली गुणस्थान में योगों की चंचलता पूर्णता मिट जाती है। वहाँ योग का अभाव रहता है, यानी आत्म प्रदेशों का चंचलपना एकदम वहाँ समाप्त हो जाता है। संगी पंचेंद्रियों के तीनों ही योग होते हैं। कौन कौन से तीन योग होते हैं बेटा बोले? हाँ बोले, अभी हमने तीन योग के नाम पढ़े ना, पढ़ो पुस्तक में पढ़ो। हाँ बराबर है, अब बोलो काय योग। बराबर, आप बोलो बेटो काय बोलो। मनोयोग, वचन योग और काय योग। अच्छा बहुत अच्छा। देखो संधि पंचेंद्रियों को कितने योग हो गए? मन है ना उनको, तो मनोयोग भी होगा, वचन योग भी और काय योग भी होगा। जिनके मन नहीं है परंतु वचन है, ऐसे कौन कौन है? जिनको मन नहीं है परंतु वचन है, बराबर, दो इंद्रिय से असंगी पंच इंद्रियों से, तो उनके कितने योग होंगे, कौन कौन से, पांच योग और वचन योग, मनोयोग उनको नहीं होगा। तो इंद्रिय से असंगी पंच इंद्रिय तक के जीवों के वचन योग और काय योग दो योग होते हैं। जिनके मन और वचन दोनों भी नहीं है ऐसे एक इंद्रियों को एकमात्र काय योग ही होता है। एक ख्याल में एक इंद्रियों को काय योग एक योग हुआ, दो इंद्रिय से असंगी पंच इंद्रिय तक काय योग और वचन योग दोनों हो गए, और संगी पंच इंद्रियों तक तीनों संगी पंच इंद्रियों को यानी देवों को नारकीय को मनुष्यों को और संगी पंचेंद्रिय तिरियंशों को तीनों योग होंगे। विग्रह गति में योग होगा या नहीं ऐसी तुम्हें आशंका होना, सवाल उठना स्वाभाविक है। वहाँ होगा कि नहीं योग, नहीं होगा ना? हाँ चित्रा जी, हाँ शरीर है ना वहाँ, कारमान शरीर। देखो अगर हम नहीं मानेंगे, योग नहीं मानेंगे तो क्या अर्थ हुआ कि वहाँ कर्म आना रुक गया? हाँ हाँ वो तो योग होगा, यानी ऐसे सोचना कि क्या उनका कर्म का बंद रुक गया दो समय के लिए, अबंद हो गई क्या? नहीं तो बंद है, उसका अर्थ क्या है? वहाँ योग है। अभी कौन सा योग है हमें पता नहीं, परंतु योग है इतना तो निश्चित हो गया, क्योंकि हमने अभी तक काय योग के प्रकार नहीं देखे, इसलिए वहाँ शरीर नहीं है। ऐसा हमें तो यही शरीर यही एक काय योग लगता है, तो हम जब काय योग के अलग अलग प्रकार देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ भी कारमान शरीर है। कल तो आपने बात की थी ना दो शरीर के साथ जाता है विग्रह गति में, कौन से दो शरीर? तेजस और कारमान, यानी वहाँ कारमान शरीर है तो कारमान काय योग भी है, तो योग है वहाँ विग्रह गति में भी, योग का सद्भाव है वहाँ जीवों के कारमान का योग होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि काल से संसारी जीव एक समय मात्र के लिए भी कभी योग विरहित नहीं हुए, क्योंकि एक समय भी कभी हमारा कर्म का बंध रुका नहीं है। इसका अर्थ है अनादि काल से एक समय के लिए भी हम कभी योग विरहित नहीं हुए। मुनि ध्यान अवस्था में जाते हैं तब योग विरहित होंगे कि नहीं? आप क्या कहते हो? नहीं होंगे। आप क्या कहते हैं सुप्रिया जी? क्योंकि वहाँ भी उनका कर्म का बंध चल रहा है, योग यानी कर्म और नो कर्म, हाँ आयोग केवल तक, हाँ हाँ तभी बराबर। हमें ऐसी सोचना चाहिए, यानी उसका उत्तर हमें अपने से ही प्राप्त होना चाहिए, पुस्तक में पढ़कर नहीं। ऐसा क्यों, ऐसा सवाल हम अपने से करें तो पहले क्या सिद्ध किया? योग है तो कर्म का ग्रहण है ही, यानी जब तक कर्म का ग्रहण है तब तक तो योग है ही। आंखें बंद कर उत्तर दे दो आप, बस चलेगा। अभी कौन सा योग है क्या योग है उसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जो जीव अरहंत अवस्था प्राप्त करते हैं उनके चौदहवें गुणस्थान के पहले समय से योग का अभाव वर्तता है, अर्थात उनका कर्म और नो कर्म का ग्रहण पूर्ण रूप से रुक जाता है। अब वहाँ नए कर्म कोई नहीं आते, न शरीर के परमाणु का भी ग्रहण होता है। जीव के एक समय में एक ही योग रहता है, मनोयोग चलता होगा तो अन्य दो योग नहीं होते, वचन योग या काय योग चलता होगा तो तब शेष दो योग नहीं रहेंगे। यह कैसे संभव है ऐसा सवाल उठना उचित है, क्योंकि एक ही काल में मन वचन और शरीर के कार्य एक साथ होते हुए हम प्रत्यक्ष देखते हैं, हमें ना सोचते भी है बोलते भी है काय की क्रिया भी चल रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि हम सारा ही एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ तो कहते हैं एक समय में एक ही योग होता है। इसका कारण इस प्रकार है, अन्य योगों के जो संस्कार रह जाते हैं उनके कारण उन अन्य योगों की क्रिया एक साथ देखने में आती है। ऐसा नहीं, वो कुमार क्या कहता है, पहले वो डंडे से चाक घुमाता है, फिर वो डंडा रख देता है और वो मिट्टी का गोला लेकर उस चाक पर रखता है। तो पहले उसने घुमाया ना तो चाक रुक गए कि उसके हाथ निकाला तो घूमते रहते कुछ काल तक, तो वो बाकी काम करता है तब तक। वैसे मनोयोग के द्वारा कुछ हमने कार्य किया तो वो उसके संस्कार बने रहते हैं। फिर वचन के द्वारा अन्य कुछ कार्य किया तो उसके भी संस्कार बने रहते हैं, और फिर काय के द्वारा, तो हमें क्या लगता है? और इतना फास्ट फास्ट है वो, एक एक समय का, हाँ एक समय हम नहीं जान सकते, अपने ख्याल में नहीं आता। जैसे आप ये उदबत्ती, जैसे अगरबत्ती ले लो जलती हुई और जोर से घुमाओ, क्या दिखता है? पूरा सर्कल दिखता है वो, तो एक 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 पॉइंट पर आके ऐसा सर्कल बना है ना, वो तो हमें एक साथ दिख रहा है पूरा सर्कल, क्योंकि वो तो उस संस्कार हमारे वो ज्ञान में बना रहता है, तो हमें लगता है पूरा एक सर्कल ही हम देख रहे हैं। तो वैसे ये तीनों के कार्य इतने फास्ट होते हैं, पलटते रहते, योग भी पलटता रहता है, उनके कार्य भी बने रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मन वचन काय तीनों के कार्य हम एक साथ कर रहे हैं। जीव बोलने की क्रिया करते करते वचन योग पलट कर मनोयोग शुरू होता है, परंतु पूर्व के वचन योग के बल से बोलने की क्रिया भी चलती रहती है। सर्कस में हम देखते हैं कि सर्कस का कोई खिलाड़ी दो हाथों से पांच पांच छह छह गेंद हवा में उछालता रहता है, वो क्या कहते हैं उसको? चकली। हाँ, तो वो देखते हैं कि एक ऊपर गया तब तक वो इतना फास्ट होता है। हाँ, और हम करने जाए तो हमें नहीं वो जमेगा। वैसी कला उस कलाकार ने अभ्यास से हासिल की हुई, उसी तरह योगों का पलटना भी इतनी शीघ्रता से होता है कि मन वचन और काय तीनों की क्रियाएं एक साथ चलती रहती है, उनमें खंड नहीं पड़ता। ख्याल में आया? क्यों बेटा? वो फास्ट फास्ट होता है ना, तो हमें क्या लगता है? हम एट अ टाइम सोचते भी है, बोलते भी है, शरीर की क्रिया भी करते हैं, परंतु आत्मा का उसमें जो योग जुड़ा है, वो मन का क्रिया चालू हो गई, चलो उसने छोड़ दिया उसको, फिर वो योग ने किसको पकड़ा? वचन को। फिर वचन की क्रिया चालू हुई, ये तो पुद्गल की क्रिया है ना, वो तो पुद्गल में बनी रहती है, आत्मा का योग पलट जाता है, फिर वो शरीर की क्रिया, शरीर में योग उसका लगाया उसने अपना, तो फिर उसकी क्रिया चलती है। तो ये सारा एट अ टाइम चलता है, तो हमें क्या लगता है कि एक साथ सारा हो रहा है। अभी उसके डिवीजन देखेंगे, उसके भेद देखेंगे। मनोयोग चार प्रकार का है, वचन योग के चार और काय योग के सात भेद है, यानी प्रकार है। सत्य असत्य उभय और अनुभय, उभय यानी दोनों, और अनुभव अनुभय यानी दोनों नहीं। कौन सा हुआ? सत्य असत्य उभय और अनुभव। मनोयोग में भी चार प्रकार है, वचन योग में भी ऐसे ही चार प्रकार है। तो सत्य असत्य उभय और अनुभय जो पदार्थ है, पदार्थों को ही कहा, सत्य पदार्थ असत्य पदार्थ उभय पदार्थ और अनुभय पदार्थ, उन्हें जानने में जीव की प्रवृत्ति होती है, तब चार प्रकार के मनोयोग होते हैं, और उन पदार्थों का कथन करने की जीव की प्रयत्न रूप प्रवृत्ति होती है, तब चार प्रकार के वचन योग होते हैं। अब प्रश्न उठना संभव है कि पदार्थ कैसे सत्य हुए? हाँ, इंद्रियों का प्रश्न आगे लिखा है। देखो, सत्य असत्य आदि प्रकार पदार्थों में कैसे संभव है, इसका उदाहरण देखकर समझेंगे। जल को जानना सत्य है, क्योंकि उस जल से तृषा बुझा सकते हैं। मृग जल को जल जानना असत्य है, वो मृग जल को भी जल समझते हैं ना, पर क्योंकि उससे स्नान पान आदि क्रियाएं नहीं हो सकती, यानी उससे कोई प्यास नहीं बुझा सकता, इसलिए उसको जल जानना यह असत्य है। कमंडल को घट जानना उभय है, कमंडल में घट के समान जल रख सकते हैं, इसलिए सत्य, यानी कमंडल को घट, कमंडल ने ये घट अलग है वो अनुभय और उभय का अलग उदाहरण है। साधारण जल जिससे हम प्यास बुझाते हैं वो तो सत्य पदार्थ हुआ, मृग जल को जल वो तो असत्य पदार्थ हुआ। अभी कमंडल अलग है और घट अलग है, घट का शेप अलग है और कमंडल का अलग शेप है। तो अभी कमंडल को हमने घट घट कह दिया, कमंडल को घट जाना, तो क्या हुआ? वो उभय कमंडल में घट के समान जल रख सकते हैं, इसलिए सत्य। परंतु कमंडल का आकार घट के समान नहीं है, इसलिए असत्य। इसलिए वो दोनों हो गया, कमंडल सत्य सत्य नहीं हुआ, कमंडल को घट जाना हमने, तो इसलिए वो उसके समान उसमें कार्य तो हो रहा है, इसलिए सत्य। परंतु उसका नाम है घट, शेप अलग है दोनों का, इसलिए असत्य। इस प्रकार उभय जानना, वो कमंडल जैसा कार्य कर रहा है इसलिए सत्य, उसका शेप अलग है इसलिए असत्य। कमंडल वो घट नहीं है ना, कमंडल वो घट नहीं है इसलिए वो असत्य। परंतु घट जैसा कार्य कर रहा है जल भरने का, उसमें जल रख सकते हैं हम, इसलिए वो सत्य, इसलिए वो उभय हो गया। ये सारा हमने ये अनुभव का भी देखेंगे। जिस पदार्थ का विशेष निर्णय नहीं होता उसे अनुभव कहते हैं। पदार्थ का विशेष स्वरूप भाषित नहीं हुआ इसलिए सत्य नहीं है, परंतु सामान्य रीति से पदार्थ को जाना इसलिए असत्य भी नहीं है। इस प्रकार अनुभय जानना, कोई पदार्थ जानना मगर उसका बराबर निर्णय नहीं हुआ, जाना तो सही ना, परंतु निर्णय नहीं हुआ वो क्या पदार्थ है वो नहीं जाना, इसलिए वो असत्य हुआ। परंतु जाना तो सही, जाना ही नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए वो असत्य भी नहीं है। एग्जाम्पल नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो ठीक तरह से जाना ही नहीं उसको। देखो अभी चलते चलते पैर में कुछ लगा तो वो उसका निर्णय नहीं हो सका कि क्या लगा, मगर कुछ लगा इतना तो समझा, तो कुछ लगा यानी वो असत्य तो नहीं था, मगर क्या लगा पता नहीं था इसलिए वो सत्य भी नहीं था। ख्याल है, ये चार प्रकार है। इस प्रकार मनोयोग के सत्य असत्य उभय अनुभय चार प्रकार है, और वचन योग भी सत्य असत्य उभय अनुभय चार प्रकार है। केवली भगवंत होंगे, अभी जो केवली भगवान है उनको भी कौन सा ये योग बताया है, वचन योग। देखो सत्य और अनुभव वचन योग बताया है। हमें क्या लगता है केवली भगवान तो सत्य ही बोलेंगे, उनको अनुभव कैसा। उसका कारण दिव्य ध्वनि अनक्षरात्मक होने से अनुभव वचन रूप और श्रोता के कानों पर पड़ने पर अक्षरात्मक होकर उनके संशयादिक दूर करती है, इसलिए सत्य वचन रूप है। केवली भगवंतों को मनोयोग होता है ऐसा जो कथन आता है, वहाँ उपचार से मनोयोग बताया है। छद्मस्थ जीवों के मनोयोग पूर्वक वचन में अपार पाया जाता है, इसलिए केवली भगवान को भी दिव्य ध्वनि है ना, हम मनोयोग पूर्वक वचन योग का हमारी क्रिया है, केवली भगवान में वचन योग है, इसलिए उनको भी उपचार से मनोयोग बताया। परंतु वहाँ मनोयोग है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं द्रव्य मन की रचना है, परंतु उसमें वो जुड़ते नहीं है, मन के द्वारा उनका जानना नहीं होता है, उनका क्षायिक ज्ञान है ना, कल बात आई थी ना, उनको सूक्ष्म ज्ञान नहीं है, क्षायिक ज्ञान है, इसलिए वहाँ उपचार से मनोयोग बताया है। वो है ही नहीं है, परंतु कहते हैं, कहने के लिए। इसलिए केवली को भी उपचार से मनोयोग का सद्भाव बताया है। अब कहाँ योग के सात प्रकार निम्नानुसार है, अभी हमने देखा था विग्रह गति में कौन सा काय योग होगा क्या है। देखो पहले तो हमने षटकाय देखे थे, वो बात अलग है, और ये काय योग के जो प्रकार बताएंगे वो अलग बात है। ये योग मार्गणा चल रही है और वहाँ हमने काय मार्गणा देखी, तो इसमें सात प्रकार कौन से हैं। तो हमारे शरीर कौन कौन से, कितने प्रकार के शरीर मालूम है आपको, वेरी गुड। औदारिक किस किस को होता है, तिरियंचों को। वैकिरी किसको होता है, बोलो पिताजी, देव और नारकी को। और आहार किसको होता है, वृद्धिधारी मुनियों को। छठे गुण स्थान वर्ती आहार कृतिधारी मुनियों को कभी कभी होता है। तो देखो अभी यहाँ की सात नाम लिखेंगे हम, हर एक में एक तो वो औदारिक लगाएंगे और फिर औदारिक मिश्र, ऐसे दो दो होंगे हर एक के, औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग, वैक्रेक का योग और वैक्रेक मिश्र का योग, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग और कारमाण का योग। अभी शॉर्ट में इसका स्वरूप देखेंगे तो एकदम आसान है। अभी तो हमने देखे ना तीन शरीर है, उसके साथ उसका एक एक मिश्र वाला भेद भी लेना और एक तो एक कारमाण का योग लेना। इनमें से उस शरीर की अपर्याप्त अवस्था में उसका मिश्र का योग होता है। देखो जब तक अभी पर्याप्त बनने जा रहा है, अभी पर्याप्त पूरे ने पूरा नहीं हुआ, अपर्याप्त है, तब उसका कौन सा होगा? मिश्र का योग होगा। भले वो लब्धि अपर्याप्त हो या अभी पर्याप्ति पूरी होने के पहले निवृत्ति अपर्याप्त हो, तो अपर्याप्त अवस्थाओं में कौन सा कार्य होगा? मिश्र वाला। जब भी देव एक अंतर्मूर्त में शरीर बनता है उनका, देवों का भी और नारकी का भी, तो जब तक वो अपर्याप्त है तब तक उनको कौन सा कार्य होगा? कौन सा वाला मिश्र होगा? देव है ना, तो देवों का कौन सा शरीर होगा? हाँ, वैकृत मिश्र होगा। अपर्याप्त अवस्था में वैकृत मिश्र होगा। अब मनुष्य तीरियंस, अभी बालक मनुष्य का जो है उनकी भी पहले अपर्याप्त अवस्था होती है। एक अंतर्मूर्त में पर्याप्ति बनती है ना, वो बनने का जो काल है वहाँ उनका कौन सा काय योग है? औदारिक मिश्र। अभी मुनि के मस्तक से वो आहार शरीर निकला तो वो बनने में भी एक छोटा अंतर्मूर्त लगता है, वो जब तक बन रहा है पूरा नहीं हुआ तब उनको कौन सा होगा? आहारक मिश्र। और जब बन गया तब आहारक का योग, बराबर? ऐसे ये तीनों में समझ। इसलिए लिखा कि उस शरीर की अपर्याप्त अवस्था में उसका मिश्र का योग होता है और विग्रह गति में कारमाण का योग होता है। मनुष्य और तिर्यंचों में औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग होता है, अपर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र होगा। देव और नारकी में वैकृत का योग और वैकृत मिश्र का योग होता है। आहार शरीरधारी मुनि के आहारक और आहारक मिश्र का योग होता है। इस तरह मन के चार, वचन के चार और काय के सात, कुल 15 प्रकार के योग हमने देखे। पहले कर्म और नौकर्म का बंध किस प्रकार होता है उसके प्रकरण में हमने योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है इस बात को विस्तार से समझा था। ये हमने पहले प्रकरण नहीं लिए, वहाँ ये योग का प्रकरण डिटेल में समझाया है, वो बाद में अगर हमें पुस्तक मिली तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। अब कल हम वेद मार्गणा का स्वरूप समझेंगे। ये काय मार्गणा कितने प्रकार के योग देखे, काय योग, काय मार्गणा, काय योग। हाँ बोलो नाम सिद्धार्थ, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। ऐसे ये सात काय योग, मनोयोग हुए चार, वचन योग हुए चार और काय योग हुए सात, ऐसे टोटल कितने हुए? 15 प्रकार के हमने योग देखे थे। ये योग मार्गणा की अपेक्षा जीवों का सारा क्लासिफिकेशन हो गया। उभय यानी दोनों, हाँ जल पर चार नहीं लगवाना है, पदार्थ में चार, सत्य और पदार्थ, असत्य पदार्थ, उभय पदार्थ और जल का उभय नहीं लेना है। जल है एक सत्य पदार्थ का जल उदाहरण हुआ, असत्य पदार्थ का मृग जल उदाहरण हुआ, उभय पदार्थ का कमंडल को घट जानना ये उदाहरण हुआ। ये नहीं है परंतु वैसा कार्य कर रहा है, इसलिए सत्य भी है और असत्य भी है, इसलिए उभय। और अनुभव पदार्थ का उदाहरण क्या हुआ? कुछ था ऐसा जाना, जाना तो सही, जाना इतना तो वो असत्य नहीं है, परंतु आनंद होता है वो क्या है ही नहीं जाना, इसलिए वो सत्य भी नहीं। हाँ, कौन से पदार्थ के बारे में वो जान रहा है? वो मनोयोग। कौन से पदार्थ के बारे में वो बोल रहा है? वो वचन योग। पदार्थों की अपेक्षा वो वचन योग के मनोयोग के बीच की है। किस पदार्थ के बारे में बोल रहा है और किस पदार्थ के बारे में कथन कर रहा है? हाँ, दोनों वचन योग और मन के द्वारा जान रहा है। समय नहीं, समय भेद है ना, वहाँ मन के द्वारा पदार्थ को जानेगा और फिर कथन करेगा। हमने अभी देखा था एक समय में एक ही योग होता है, एक ही योग रहता है। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सुना देतो।